ओम ओम ओम। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित वाक्य वृत्ति के आधार पर सायंकालीन विशेष गीता चिंतन माला के अंतर्गत विचार चल रहा है। अभ्यास के लिए वाक्य वृत्ति के 16वां मंत्र। एवं इंद्रिय दृङ्णाहम् इंद्रियाणि इति निश्चिनो मनो बुद्धिस्तथा प्राणो नाहम् इत्यवधारय। संघातोपि तथा नाहम् मिति दृश्य विलक्षणम् द्रष्टारम् अनुमानेन निपुणम् संप्रधारय। देहेन्द्रियादयो भावा हानादिव्यप्रतीच्छमः यस्य सन्निधिमात्रेण सोऽहम् इत्यवधारय। अनापन्न विकारः सन् अयस्कान्तवदेवयः बुद्ध्यादिश्चालयत्प्रत्यको सोऽहमित्यवधारय। अजडात्मवदा भान्ति यत्सान्निध्याज्जडा अपि देहेन्द्रियमनः प्राणः सोऽहम् इत्यवधारय। अगमन्मे मनोऽन्यत्र साम्प्रतं च स्थिरीकृतम् एवं यो व्यतिधिवृत्तिम् सोऽहम् इत्यवधारय। ये धारणा अवधारय गुरु शिष्य को कह रहे हैं, ऐसा तुम निश्चय करो। कैसा निश्चय करें भाई? शिष्य ने प्रश्न किया था, अयम पिंड, ये जो शरीर है अन्नमय कोष, ये घड़े की तरह दृश्य होने के कारण यह पिंड आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि घट दृष्टा का दृश्य घट है, इसलिए घट दृष्टा से भिन्न है, घट आत्मा नहीं हो सकता। घट दृष्टा से घट भिन्न है, इसी तरह तुम अपने देह को जानते हो कि नहीं? यदि अपने शरीर को, पिंड को जानते हो तो तुम हो गए दृष्टा, देह दृष्टा, और देह हो गया दृश्य। ये सर्वमान्य नियम है कि दृश्य दृष्टा से भिन्न होता है। दृष्टा दृश्यते सर्वथा भिन्न होता है। शिष्य पूछ रहा है, अनात्मा यदि पिंडो अयम, अयम पिंड यदि अनात्मा, अनात्मा है, किस हेतु से? उक्त हेतु बलान, दृष्टा और दृश्य के हेतु से, दृश्य दृष्टा से भिन्न होता है, इस हेतु के चलते शरीर आत्मा नहीं हो सकता है। तो मुझे कृपा करके करामलकवत, हाथ में रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट रूप में दृष्टा क्या है वो मुझे बता दीजिए। इसका मतलब संशय विपर्य रहित दृष्टा को आप मुझे समझाइए। देह दृष्टा नहीं है तो इसके अतिरिक्त और दृष्टा क्या है? गुरु बता रहे हैं उसी बात को। घट दृष्टा, ये कल का ही प्रसंग में थोड़ा सा जोड़ रहा हूं। घट दृष्टा घटाद भिन्न सर्वथा न घटो यथा, दृष्टांत दिया, यथा जिस तरह घट दृष्टा सर्वथा घट से भिन्न ही होता है, सर्वथा भिन्न होता है। भिन्न होता है कि नहीं होता इसमें किसी को शंका संशय होता ही नहीं है, स्पष्ट है। दृष्टा अपने दृश्य से वह सर्वथा भिन्न होता है, इसमें शंका किसी को होती ही नहीं। तो तुम्हें यह शंका क्यों हो रही है कि एक तरफ तुम कहते हो कि मैं देह को जानता हूं, शरीर को देखता हूं, जानता हूं, दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि शरीर से मैं अलग हूं कि नहीं हूं, ये शंका क्यों हो रही है? ये होनी ही नहीं चाहिए, है? घट दृष्टा घटाद भिन्न सर्वथा न घटो यथा, देह दृष्टा तथा देहो, देह दृष्टा तथा इसी तरह देह दृष्टा देहो न अहम, देह को जानने वाला मैं देह नहीं हूं, इति अवधारणा। ये बात तुम्हें निश्चय करना ही पड़ेगा। आत्मा को करामलकवत स्पष्ट जानना चाहते हो तो तुम्हें ये बात निश्चय करना ही पड़ेगा कि देह दृष्टा देहो न अहम, देह को देखने वाला मैं देह नहीं हो सकता। या तो तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि मैं देह को नहीं जानता हूं, मैं शरीर को नहीं जानता हूं, यह कहना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम्हें कहते हो कि मैं शरीर को जानता हूं तो तुम शरीर से अलग हो, यह तो तुमको निश्चय करना ही पड़ेगा। इति अवधारय। तो शिष्य शायद ये प्रश्न कर रहा है, शंका करता है, महाराज देह को तो चक्षुर इंद्रिय देखती है, देह को देखने वाली कौन, देखने वाला कौन है? चक्षुर इंद्रिय या त्वच इंद्रिय है ना, त्वच इंद्रिय स्पर्श करके जानेंगे। अंधा अपने शरीर को चक्षुर इंद्रिय से भले ही ना देखता हो, स्पर्श से अपने शरीर को जानता है, दूसरे के शरीर को चक्षुर इंद्रिय से भले ही ना देखता हो, छूकर तो जान सकता है, है? ये तुम्हारा शरीर है, ये फलाना व्यक्ति है, ये फलानी चीज है, शरीर की बात छोड़ दो, अंधा कुर्सी को चक्षुर इंद्रिय से भले ही ना देखता हो, लेकिन छूकर ये कुर्सी है, ये टेबल है, पदार्थों को तो जान सकता है ना। तो देह दृष्टा, देह को देखने वाले तो इंद्रियां हैं। तो इसका मतलब दृश्य देह हो गया, दृष्टा इंद्रिय हो गए। दृश्य घटादि हो गए, दृष्टा इंद्रिय हो गया। तो आप लोगों को एक बात और निश्चय करना चाहिए, इस प्रसंग को स्पष्ट करने वाला आदिगुरु शंकराचार्य जी का एक प्रकरण ग्रंथ छोटा सा और है, दृश्य विवेक, जिस पर स्वामी विद्यारण्य मुनि जी की संस्कृत टीका है। पुस्तक का नाम है दृश्य विवेक, विद्यारण्य मुनि स्वामी ने उसमें टीका लिखी है, बड़ा सुंदर है। दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, निश्चय करने के लिए तो लगभग ये दो श्लोकों से वही प्रक्रिया को अपनाया है। तो शायद शिष्य के मन में ये शंका हो सकती है कि देह दिखाई पड़ने के कारण, दृश्य होने के नाते से देह आत्मा नहीं है, इंद्रियां दृष्टा होने के कारण इंद्रियां ही आत्मा है, क्योंकि आपने कहा दृष्टा आत्मा है, ऐसी शंका शिष्य के मन में। ये अन्यथा निश्चय, ये भी तो गलत ही निश्चय है ना, ये भी तो सही निश्चय तो है ही नहीं। हाँ, तो उसको स्पष्ट करते हुए 16वें श्लोक से शंकराचार्य जी उसका समाधान कर रहे हैं। एवं दृग्दृश्य के सिद्धांत के आधार पर तुम यदि कदाचित ये निश्चय करो कि इंद्रियां दृक हैं, देह दृश्य है, तो इंद्रिय ही आत्मा है, ऐसा तुम कदाचित निश्चय कर लो तो वो गलत निश्चय हो जाएगा। क्यों महाराज? एवं इंद्रिय दृंग नाहम, इंद्रिय को देखने वाला कोई और है, तो इंद्रियां भी दृश्य हो जाएंगी। यदि इंद्रियों को देखने वाला कोई और न होता तो इंद्रियां कभी भी दृश्य न बन पाते। तो इंद्रियों को देखने वाला कोई और है, इसलिए इंद्रियां भी किसी अन्य द्वारा दृश्य हो गया। तो इंद्रियां एक बार किसी के द्वारा दिखाई पड़े तो इसका मतलब वो आत्मा नहीं हो सकता है, जैसे वेदांत की एक प्रक्रिया है अन्वय व्यतिरिक्त, कोई वस्तु का एक जगह भी व्यतिरिक्त हो जाता है वह मिथ्या हो जाता है, असत हो जाता है। इसी तरह कोई वस्तु किसी के द्वारा दृश्य हो गया कि वह अनात्मा हो गया, बस खत्म। अब ये कौन देख रहा है इस विचार करने की जरूरत नहीं है, दृश्य हो गया कि नहीं। अब ये बात अलग है कि किसके द्वारा दृश्य हो गया, ये जिज्ञासा का विषय बनेगा, उसका स्पष्टीकरण होना पड़ेगा, करेंगे। एवं इंद्रिय दृग्नाहम इंद्रियाणी इति निश्चिनु। आंखों से पुष्प दिखाई पड़ा तो पुष्प तो मैं नहीं हूं, ये तो निश्चय हो गया। लेकिन पुष्प को देखने वाला इंद्रिय तो मैं हूं, दृष्टा आत्मा है तो इसका मतलब इंद्रिय मैं हूं। बोले नहीं बेटा, इंद्रियां भी दृश्य है, नाहम इंद्रिय, ये निश्चय तुमको करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं है इंद्रिय, मैं क्यों नहीं हूं? क्योंकि इंद्रिय मनोदृश्य है, इंद्रिय किसके द्वारा दृष्ट है, किसके द्वारा दिखाई पड़ता है इंद्रिय, इंद्रिय इंद्रिय के द्वारा दिखाई नहीं पड़ेगा, इंद्रिय शरीर के द्वारा भी नहीं दिखाई पड़ेगा, इंद्रिय इंद्रिय के द्वारा भी दिखाई नहीं पड़ेगा। इंद्रियों को इंद्रिय से नहीं जान सकते हो तुम, इंद्रियों को जानने के लिए मन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इंद्रियां किसके द्वारा दृष्ट हैं, मन द्वारा दृष्ट है, दृष्ट माने मन द्वारा दिखाई पड़ने वाले हैं इंद्रियां। इसका मतलब दृश्यत्व आया कि नहीं इंद्रिय में, इंद्रिय में दृश्यत्व धर्म आया कि नहीं, मन के द्वारा दिखाई पड़ने के कारण इंद्रिय में दृश्यत्व धर्म आया। जिस तरह घट में आंखों के द्वारा दिखाई पड़ने के कारण घट में दृश्यत्व आया, आया कि नहीं घट में दृश्यत्व, क्योंकि आंख आवश्यक दिखाई पड़ा इसलिए घट में क्या आया, दृश्यत्व धर्म आ गया। और जिसमें दृश्यत्व धर्म है वो अनात्मा है, तब इंद्रिय में भी दृश्यत्व धर्म आ गया, शरीर में भी दृश्यत्व धर्म आ गया, इसलिए शरीर अनात्मा है, और इंद्रिय में भी दृश्यत्व धर्म आ गया। शरीर इंद्रिय के द्वारा दृश्य है और इंद्रियां मन द्वारा दृश्य है। तब ये निश्चय करो कि दृष्टा मन है, दृश्य इंद्रियां हैं, इंद्रिय और मन के बीच में ये भेद है, दृश्य भेद, दृष्टा और दृश्य का भेद है, भिन्नता है। अर्थात इंद्रिय से मन सर्वथा भिन्न है, जैसे घटदृष्टा मैं घट से सर्वथा भिन्न हूं, उसी तरह देह दृष्टा मैं देह से सर्वथा भिन्न हूं, इसी तरह मन दृष्टा मैं मन से भिन्न हूं। अब यह शिष्य एक है कि मन तो क्या कहते हैं, इंद्रियों को तो मन देखता है, तो मैं ही मन हूं, यह निश्चय करूं। जो इंद्रिय का दृष्टा है वो आत्मा है, वो तुम हो, वो मैं हूं, ये निश्चय करूं मैं? ठीक है बेटा, विचार करो, मन को देखने वाला कोई और है कि नहीं? मन को देखने वाला कोई और है, और मन दृश्य हो जाता है तो तुम नहीं हो सकते हो। मन दृश्य एक बार हो जाता है तो वो मन तुम नहीं हो। एवं इंद्रिय दृग्नाहम इंद्रियाणि इति निश्चिनु मनो। मन किसके द्वारा दृष्ट है? बुद्धि द्वारा दृष्ट है। वृत्ति भेदात, वृत्ति कार्य भेद से एक ही अंतकरण के दो भाग हैं। एक ही अंतकरण के दो भाग हैं। संशय विपर्यय, संशय विकल्प करता मन और निश्चय करता बुद्धि है। दोनों अंतकरण ये कार्य भेद से, वृत्ति भेद से ये दोनों में अलगता है, इतना ही फर्क है। मन भी दृश्य है। किसके द्वारा दृश्य है? बोले बुद्धि के द्वारा दृश्य है। तो फिर मैं बुद्धि हूं? मन नहीं हूं तो बुद्धि तो मैं हूं। दृष्टा आत्मा है, दृष्टा तुम हो कहते हो तो बुद्धि दृष्टा, मन दृश्य, तो बुद्धि ही मैं हूं। बुद्धि भी दृश्य है। तो किसके द्वारा दृश्य है? तो अब यही परंपरा जाओ, दृश्य विवेक में ऐसी परंपरा है, और अंत में कूटस्थ को ही सबका दृष्टा सिद्ध किया है दृश्य में। यहां पर भी उसी को सिद्ध करना है, क्योंकि हमने कल बताया था ये प्रसंग 27वें श्लोक तक तुम पदार्थ का शोधन है। कल बताया था हमने ये, अभी तक सब तुम पदार्थ का ही शोधन है। तुम क्या हो ये बताने के लिए ये प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। उसने शिष्य ने पूछा नहीं कि मैं करा मलक, बताइए कि मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, तुम पद का अर्थ क्या है। शिष्य ने यह कहा कि पद के अर्थ को ही जब मैं नहीं जानता हूं तो वाक्य के अर्थ को मैं जानूं कैसे? तो मुझे पद के अर्थ समझाइए, तभी जाकर मैं वाक्य का अर्थ जान पाऊंगा। और आपने कहा कि वाक्य जन्य जो ज्ञान है वही संसार बंधन का निवर्तक है, हटाने वाला है, छुटाने वाला है। फिर वाक्य का अर्थ जन्य ज्ञान वो क्या, कैसे होगा? वाक्य का, वाक्य के अर्थ को मैं कैसे जानूं? पद के अर्थ नहीं जान रहा हूं, पहले पद का अर्थ बताइए। तब पद के अर्थ बताने के लिए पहले तुम पद का शोधन ये किया जा रहा है। घटद्रष्टा गतात भिन्न, यहां से 15वें श्लोक से ये सब बताया जा रहा है। मनोबुद्धि ही, बुद्धि भी दृश्य है। बुद्धि किसके द्वारा दृश्य है? तो आभास के द्वारा दृश्य है। बुद्धि चिदाभास आभास के द्वारा दृश्य है। कैसे दृश्य है बुद्धि? मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं। मैंने निश्चय किया। तो जो निश्चय करता तो बुद्धि है, इसका मतलब निश्चय किया। तो बुद्धि का दृष्टा हो गए, तो बुद्धि के कार्य को देखना ही बुद्धि का देखना है, क्योंकि अनुमान में कार्य को देखकर कारण को देखना माना जाता है। कारण भले ही न दिखे, उसका कार्य दिख रहा है तो मतलब कारण भी दृष्ट हो जाता है। समझे कि नहीं? किसी नदी किनारे किसी का घर है, और सुबह जब वो उठा तो नदी में बहुत बाढ़ आया हुआ था, फ्लड, एकदम गंदा पानी, मटमैला पानी, लाल लाल फ्लड आ गया अचानक। अब अचानक इतना पानी एकदम आ जाना वो स्वाभाविक तो है ही नहीं, तो उसने क्या निश्चय किया कि ऊपर पहाड़ में कहीं न कहीं खूब बारिश हुई है, रात को ऊपर बारिश कहीं न कहीं हुई है। प्रत्यक्ष देखा किसको? कार्य को, बाढ़ को देखा। और निश्चय किया किसको? बारिश हुई है इसको। तो बारिश हुआ उसने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं, लेकिन उसका जो कार्य देखा तो इसका मतलब कारण दृष्ट हो गया। साचर्य नियम व्यक्ति आदि का स्मरण करता है, जब भी ऊपर बारिश हुई इसी तरह बाढ़ आता ही रहा, तो आज भी बाढ़ आ गया इसका मतलब बारिश हुई। कार्य को देखकर कारण का निश्चय या अनुमान। दरवाजा बंद है हॉल के अंदर, पर्दा लगा हुआ है, दरवाजा बंद है, किसी को भी अंदर जाना नहीं दिया जा रहा है। सामान्य दृष्टा अनुमान, तीन प्रकार के अनुमान हैं। अनुमान कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के अनुमान हैं। कारण को देखकर कार्य का निश्चय, पहला प्रकार। कार्य को देखकर कारण का निश्चय, दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार सामान्य तो दृष्ट अनुमान, तीसरा प्रकार है। उसका कार्य कारण का कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक सामान्य संबंध से उस व्यक्ति का निश्चय, उस वस्तु का निश्चय होता है। उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति का, वह एक निश्चित चप्पल या जूता पहनकर आया करता था। कोई व्यक्ति निश्चित जूता या चप्पल पहनकर आया करता था, उसने उस जूते के साथ उस व्यक्ति को जूते के साथ है ना, कई बार देखा। और वो देखने से क्या निश्चय किया कि इसका ये जूता है, ये जूता फलाने व्यक्ति का है, ये चप्पल फलाने व्यक्ति का है। ये सामान्य हेतु, उसने जूते को भी पहचानता है किसका है, फलाने का है। व्यक्ति को भी पहचानता है, उसके कौन सा जूता है, फलाना जूता है। तो खोजता आया उस व्यक्ति को, तो बाहर चौकीदार से पूछा कि फलाना व्यक्ति अंदर है, तो चौकीदार ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं। अब है कि नहीं, आए कि नहीं आए, बाहर दरवाजे में खड़े होकर देखने लगा जूते चप्पलों को। तो उसने उसके जूते को देखा, किसको देखा है, जूते को देखा, तो दृष्ट हुआ जूता और निश्चय हुआ क्या, व्यक्ति अंदर है, व्यक्ति को तो नहीं देखा है ना। ये बात अलग है कि जरूरी नहीं है कि वह वही जूता पहनकर आए, हो सकता है वो जूता बदल सकता है, लेकिन एक सामान्य, इसको सामान्य नियम बता दिया है, इसको सामान्य तो दृष्ट अनुमान कहा जाता है। एक छोटा सा हेतु से लकड़ी हाथ में, वो हमेशा डंडा लेकर चलता था, तो वो व्यक्ति मेरे उठने से पहले उठ के बाहर चला गया। उसको कहा था कि जाते समय गाड़ी में, मेरे गाड़ी में तुमको भी ले जाएंगे। बाहर मैं भी निकला तो वो दिखाई नहीं पड़ा, क्या वो चला गया, इधर खोजा उधर खोजा कहीं दिख नहीं रहा है, तो चला गया वो। तो उसने देखा उसके लकड़ी को, लकड़ी बाहर रख के वो टॉयलेट गया था और टॉयलेट के अंदर गया था, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा देर हो गई। लेकिन उसने देखा क्या, किसको देखा, लकड़े को देखा। उसने कहा कि यही है, गया नहीं है, यही है, टॉयलेट में है। देखा लकड़ी को और निश्चय किया व्यक्ति को, इसी तरह देखा जूते को, निश्चय किया व्यक्ति को, ऐसे अनेक हेतु हो सकते हैं। ये से हेतु कोई अनिवार्य नहीं, ये पक्का ही हेतु है। ये हेतु में यत्वाभास भी हो सकता है, दोष भी आ सकता है, लेकिन एक सामान्य व्यवहार में इस तरह अनुमान किया जाता है। तो इसी तरह बुद्धि भी दृश्य है। बुद्धि दृश्य है, कैसे निश्चय करोगे, कि जब बुद्धि ने निश्चय किया तब तुम कहते हो कि हां निश्चय हुआ। जब बुद्धि निश्चय नहीं करती है तो तुम कहते हो कि निश्चय नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब बुद्धि दृष्ट हो गया। निश्चय होना या न होने के हिसाब से, इन हेतु से बुद्धि को तुम देख रहे हो। बुद्धि क्या हो गया, दृष्ट हो गया। तब फिर सुसुप्ति अवस्था में तो बुद्धि भी तो लुप्त हो जाती है। बुद्धि का सद्भाव असद्भाव दोनों का दृष्टा। तो पूर्व पक्ष कहता है बुद्धि लुप्त हो जाए तो भी प्राण तो चलता ही रहता है, इसलिए प्राण ही आत्मा है। इंद्रियां भी लुप्त हो जाती हैं, मन भी लुप्त हो जाता है, घटपट आदि दृश्य भी बाधित हो जाते हैं, ये सब आत्मा न हो भले, लेकिन प्राण तो चलता ही रहता है, इसलिए प्राण ही आत्मा है। आज भी ये बात तुम हम सैकड़ों वेदांत के श्रोताओं को भी लगता यही है कि प्राण ही आत्मा है, लगता यही है। प्राण आत्मा नहीं है ऐसा अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, सुन तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, भरोसा नहीं हो रहा है, है? जैसे घट दृष्टा मुझसे घट का कोई संबंध नहीं, ये तो लगभग व्यवहार में प्रत्येक अनुभव हो रहा है और निश्चय हो चुका है, इसमें शंका नहीं है। लेकिन प्राण दृष्टा मैं, मुझसे प्राण अलग है, प्राण दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, इसलिए प्राण अलग है, मैं अलग हूं। ये युक्तियों से, शब्दों से निश्चय भले ही कर लो, स्वयं अनुभव में और पक्का होना मुश्किल है, असंभव नहीं है लेकिन कठिन है। प्राण को दृश्य के रूप में, अनात्मा के रूप में अनुभव करना बड़ा कठिन है। गुरु जी कह रहे हैं यहां शिष्य को, प्राण भी आत्मा नहीं है, इसलिए प्राणो ना हम इति अवधारया। ना हम का इंद्रिय से लेकर मन बुद्धि प्राण तक सभी जगह अन्वय करना, इंद्रियाणि ना अहम दृश्यत्वात्, इंद्रियां दिखाई पड़ती हैं दृश्यत्वात्, अहम ना, मनो अहम न, मन मैं नहीं हूं दृश्यत्वात्, बुद्धि मैं नहीं हूं दृश्यत्वात्, प्राण भी मैं नहीं हूं दृश्यत्वात्। दृश्यत्व हेतु जहां रहेगा वह मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मुझ में सिर्फ दृष्ट दृष्टित्व रह सकता है, दृश्यत्व नहीं रह सकता। वेदांत की प्रक्रिया बता रहा हूं, वेदांत की गहरा प्रसंग है। अब तुम्हें ये कहानी सुना दूं। एक महात्मा थे, कहते फक्कड़ महात्मा थे, परिव्राजक थे, घूमते फिरते थे, तो भिक्षा मांगते थे एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, चरई बहती चरई बहती। परिव्राजक थे वो, घुमक्कड़ थे। अब कहां उनको सोना, कहां बैठना, कहां क्या करना। कहते हैं कि किसी भक्त ने महात्मा को एक बढ़िया कम्बल दे दिया, महाराज ये कम्बल रख लीजिए, सुबह जब ध्यान करते समय भी उसको लपेटकर आसन में रखिए, आसन बिछाकर जो है आप उसी में बैठकर ध्यान करिए, जप करिए, तप करिए, और यदि ठंडी लगे तो ऊपर से ओढ़ लीजिए, ठंडी दूर हो जाएगा, और यदि गर्म लगे तो सिरानी में रख लीजिए, तकिया का काम कर लेगा। ये बहुआयामी है, ये कंबल बड़ा काम का है, महात्मा ने दिया, नहीं भक्त ने दिया, महात्मा वो कंबल को लेके घूमते रहे। एक जगह भिक्षा में बढ़िया भोजन खा लिए, थोड़ा ज्यादा ही खा लिया होगा, थोड़ा ठंडी का मौसम था, और ठंडी हो, बढ़िया बढ़िया गरम गरम पकौड़े हो, चटनी हो, कोत मिर्ची की लीली चटनी हो, है, हरा चटनी हो, बढ़िया पकौड़ा हो, वो भी पनीर का पकौड़ा, क्या कहना, है।
खाए महात्मा ने टन
और ऊपर से पी ली पानी।
अब तो यात्रा करने की हिम्मत ही नहीं हुआ है ना,
कम्बल तो था ही।
और उतने में 10-12 बजे का समय था, ठंडियों के समय में, और दिन में धूप खिल गया था, मौसम बड़ा सुहावना था।
चलते चलते गए तो थका भी थके थे, भोजन टन था, सोने की इच्छा हो गई। तो वही चबूतरे में बड़ के नीचे चबूतरे में वह सो गए, कम्बल ओढ़कर सो गए। क्या बढ़िया नींद आ गई। आज सुबह प्रवचन में उपस्थिति थोड़ी कम थी, हमने अनुमान लगाया ये उपस्थिति कम क्यों हुई, क्योंकि कल दिन भर खूब गर्मी थी, अब रात को हुई बारिश, मौसम ठंडा हो गया, तो सुबह उठने में सभी को मुश्किल हो गया। ठंडा मौसम, क्या कहना, बहुत दिनों के बाद सुबह ठंडे में सोने को मिला है तो कौन उठेगा, शायद वही कारण हो सकता है, हमने गैस किया, अनुमान लगाया। तो वो मस्त सो गए, और ऐसा नींदा गहरी नींद में चले गए वो। तो कुछ उचक्के होते हैं ना, चोरी करने वाले उचक्के लड़के, घूमते घूमते वहां चले गए उसी चबूतरे में, कि कोई सोया है, कौन सोया है, ए कौन सोया है, एक आवाज, दो आवाज, तीन चार आवाज लगाई, वो उसको पता ही नहीं, वो तो सोए महात्मा मस्त, पनीर के पकौड़े और थोड़ा थोड़ा गर्मी है, उसके ऊपर कम्बल ओढ़कर सोए, तो क्या मस्त निद्रा, पता ही नहीं चला। लड़कों को लगा कि गहरी नींद में चला गया है, इसको कुछ पता नहीं है, आज चोरी करने को कुछ मिला नहीं, इसका कम्बल खींच लो, एक कम्बल लेके चलो, क्योंकि वो तो सोया है। लड़कों ने धीरे से कम्बल खींच ली, तो कम्बल आ गया, महात्मा को तो कुछ पता ही नहीं चला, कम्बल लेकर चले गए वो लड़के। थोड़ी देर के बाद जब उनकी आंख खुली, इधर देखा उधर देखा इधर देखा, कहीं कम्बल का नाम निशान ही नहीं, एक कम्बल कहां गया, कौन ले गया, सोते समय तो उनको स्मरण हुआ या सोते समय तो मैं उड़ के सोया था, लेकिन इस बीच में गए कहां, किसी ने चोरी करके ले गया, तो मुझे पता क्यों नहीं चला, मेरे शरीर के ऊपर से कंबल तान के खींच के ले गया, मुझे पता क्यों नहीं चला, क्योंकि मैं गहरी निद्रा में था इसलिए मुझे पता नहीं चला, मैं सो गया था। ये बात तो ठीक है, मैं सो गया था इसलिए मुझे पता नहीं चला, लेकिन प्राण तो जगा हुआ था, चल ही रहा था, नाक से बाहर जाना आना, मुख से बाहर जाना आना, प्राण तो सोया नहीं था। फिर प्राण को पता क्यों नहीं चला, प्राण को पता क्यों नहीं चला, कम्बल चोरी हो रहा है, कम्बल खींचे जा रहा है, प्राण भी सोया होता तब तो बात समझ में आती है कि प्राण को भी पता नहीं चला, प्राण जगा हुआ है, मैं सोया हूं इसलिए मुझे पता नहीं चलना, ये बात समझ में आती है, लेकिन प्राण जगा हुआ है, जगे हुए को तो पता चलना चाहिए। इसका मतलब है कि प्राण में जानने की क्षमता ही नहीं है। क्या है,
प्राण जान ही नहीं सकता है, इसलिए प्राण जड़ है। चेतन होता तो प्राण एक कम्बल खींचते समय जान लेता, और क्योंकि कम्बल खींचा जा रहा है प्राण जगा हुआ है फिर भी नहीं जानता है, इसका मतलब प्राण क्या है? जड़ है। तो महात्मा नाचने लग गया। क्यों? महात्मा तो खुश हो गया, नाचने लग गया किस बात को लेकर? बोलो। आज एक बात तो पक्की हो गई कि प्राण जड़ है, इस बात की खुशी में महात्मा नाचने लगा। तब तक हमारे मोहनीश पहुंच गया वहां, महाराज क्यों नाच रहे हो, क्या बात है, इतनी खुशी किस बात की है? बोले मेरा कम्बल कोई चोरी करके ले गया। अरे आपका कम्बल चोरी करके ले गया कोई? बोले हां। तब फिर नाचने की क्या बात है, वो तो दुखी होना चाहिए था। बोले कम्बल चोरी करके ले गया इसका मुझे दुख नहीं, खुशी इस बात का है कि आज एक चीज का पक्का निश्चय हो गया कि आज तक तो प्राण ही जानता है, प्राण ही मुझे जिला रहा है, मुझे जिंदा रखने वाला है, प्राण ही आत्मा है, प्राण ही परमात्मा है, प्राण के अलावा दूसरा कोई जानता नहीं, कोई चेतन नहीं, बचाने वाला कोई नहीं, वही सब कुछ है। मैं निश्चय करके बैठा था, आज ये पक्की बात हो गई कम्बल के चोरी से कि प्राण जड़ है, ये निश्चय हो जाना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कौन बोल रहा है? हाँ। विचार करने वाला तो इस तरह खुशी होता है। वो अभी तक तो अनात्मा को आत्मा मान रहा था, आज एक निश्चय हुआ कि अनात्मा अनात्मा ही है, प्राण अनात्मा है, प्राण मैं नहीं हो सकता हूं, और प्राण में जानने की शक्ति नहीं, प्राण दृष्टा नहीं हो सकता, इसलिए प्राणो ना हम, अहम प्राण न। आपको इस तरह महात्मा की तरह प्रसन्न होने का अवसर आया है? इसका मतलब आप लोग विचार ही नहीं करते हो ऐसा लगता है। खाते पीते घूमते फिरते हो, सामान्य दैनिक चल रहा है, विचार नहीं करते हो। इसका मतलब है कि कोई वस्तु का भ्रांति से अन्यथा निश्चय हुआ हुआ वो भ्रांति टूट गया, ऐसा अवसर आएगा तब ना प्रसन्न होंगे, और वो अवसर शायद आपको अभी तक आया नहीं होगा है? गाड़ी चोरी हो जाए खुश हो जाओगे? हाँ, ये तो अनात्मा था, जड़ था, ले गया तो ले गया, मैं तो चैतन्य हूं, आत्मा हूं, मुझे थोड़ी ले जा सकता है वो। खुशी होने का अवसर यही है, इस तरह निश्चय होना चाहिए। मरने वाला मर गया क्योंकि जड़ था, अनात्मा था, मरने वाला मर गया है? आत्मा तो मरता नहीं है, है? वाह, महात्मा तो जानते हो बड़े उठपटांग होते हैं। रात को महात्मा सोया था, गर्मी थी तो लंगोटी लगाया और कपड़े सब खोल के खाली लंगोटी लगाया सो गया। इस बीच में मच्छरों का भंडारा शुरू हो गया, है ना? होगा कि नहीं बोलो? महात्मा गर्मी के समय महात्मा यदि नंगा सो जाए तो मच्छरों का भंडारा होगा कि नहीं? वाह, मच्छर तो क्या मस्ती से आए और चूसे जा रहे हैं महात्मा। तो कई बार ऐसा होता है, मच्छर फिर ऐसे मूर्ख जात है, ये जगने से पहले उड़कर दूर चला जाना चाहिए, ये बुद्धि उसमें आती ही नहीं है, चूसे रहता है। और जब वो करवट बदलता है तो दब के उसका पेट फट जाता है वहीं। कई बार देखा है वो हमने, हाँ, सफेद चादर उठा के बिछा के सो गए, रात में मच्छर खूब काटे और जो है सब चादर देखा तो लाल लाल खून ही खून। क्या हुआ तो बोले वही खून पी लिया, पेट बड़ा हो गया, मच्छर उड़ नहीं सके, बैठे रहे, महात्मा ने करवट बदल ली, उसका पेट फूट गया, मर गए। एक महात्मा सुबह देखता है तो वाह, चादर तो मच्छरों के रगत खून पीने से लाल लाल हुआ है। महात्मा नाचने लग गया, खुश हो गया। क्यों? बोले आज पक्का हो गया शरीर आत्मा नहीं है। यदि शरीर आत्मा होता, चैतन्य होता, तो मच्छर खून पीते समय उनको शरीर को पता चलता ना, मच्छर खून पी रहा है, तो शरीर उसका प्रतिकार करता है। इसका मतलब मैं गहरी नींद में जाने के बाद शरीर को मच्छर खून पी गए और शरीर को पता ही नहीं चला, इसका मतलब शरीर जड़ है पक्का। एक बात का निश्चय हो गया कि शरीर जड़ है, चैतन्य नहीं है। महात्मा तो ऐसे ऐसे उठपटंग होते हो, कम्बल चोरी हो गया तो भी खुशी। कम्बल चोरी है किस बात की खुशी? प्राण आत्मा नहीं है ये निश्चय हो गया। मच्छर ने खून चूस के मर गए, इस बात की खुशी? शरीर आत्मा नहीं है ये प्रमाण है। जाने दो, यही तो विचार करना है, इसी तरह तो विचार करना है। एवं इंद्रिय दृग्नाहम इंद्रियाणी इति निश्चिनु मनोबुद्धिस्तथा प्राणो नाहम इत्यवधारय। मैं मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, प्राण भी मैं नहीं हूं, क्योंकि ये जड़ है, मैं चैतन्य हूं, ऐसा निश्चय करो। संघातोपि तथा नाहम इति दृश्य विलक्षणम् द्रष्टारम् अनुमानेन निपुणम् संप्रधारय। तो ठीक है, ये अलग अलग आत्मा नहीं हो सकते, लेकिन इस सब का मिला जुला संघात सब मिलकर एक आत्मा तो हो सकता है ना, शरीर इंद्रियां, शरीर अलग आत्मा नहीं हो सकता है, लेकिन शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण ये सब मिलेंगे, इसको बोलते हैं संघात। सब मिलकर आत्मा हो सकता है कि नहीं? चार्वाक तो यही कहते हैं, ये तो सभी लोग यही कहते हैं। वेदांत के अलावा प्राय करके सभी लोग पूरे टोटल संघात को ही आत्मा मानते हैं। इंद्रियां अलग आत्मा नहीं हो सकता, शरीर अलग आत्मा नहीं हो सकता, मन अलग आत्मा नहीं हो सकता, प्राण अलग आत्मा नहीं हो सकता है, लेकिन ये सब मिलेंगे तो चैतन्य आत्मा प्रकट हो जाएगा। तो संघात ही आत्मा का स्वरूप है, इनमें से एक भी चला गया तो आत्मा का अस्तित्व तो खत्म, यही मानते हैं बहुत से लोग, तो उसी को यहां विचार के लिए प्रस्तुत किया है। संघातोपि तथा नाहम, हे शिष्य, तुम्हारे दिमाग में कदाचित ये बात पक्की होगी, दृढ़ होगा कि सबका मिला जुला स्वरूप आत्मा का आत्मा है, तो ये भी आत्मा नहीं है।
इति,
क्योंकि ये सब दृश्य 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 मिलकर, क्या 50 दृश्य मिलकर एक दृष्टा बन सकता है? हाँ? 50 दृष्टि दृश्य या 100 दृश्य 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 मिलकर एक दृष्टा बन सकता है? नहीं बन सकता है, है? दृश्य तो चाहे वो अकेला हो चाहे समूह में हो, दृश्य तो दृश्य ही है, इसलिए संगात आत्मा नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि संगात आत्मा होता तो तुम्हें ये अनुभव होता कि मैं समूह हूं, यह अनुभव होता, मैं समूह हूं यह अनुभव होता ना। संघात यदि आत्मा होता तो मैं समूह हूं, अनेक मिलकर एक हूं, ऐसा अनुभव होता। लेकिन तुम्हें अनुभव तो समूह हूं ऐसा अनुभव तो होता ना, मैं अकेले हूं यह अनुभव हो रहा है। दूसरी बात, सभी मिलकर यदि मैं सिद्ध होता तो इनमें से एक के भी न रहने पर मेरा अस्तित्व खत्म होता, इनमें से एक के भी न रहने पर मेरा अस्तित्व खत्म होता, हाथ के न रहने पर मेरा अस्तित्व खत्म होता, आंख के न रहने पर मेरा अस्तित्व खत्म होता, कान के न रहने पर मेरा अस्तित्व खत्म होता, टांग के न रहने पर मेरा अस्तित्व खत्म होता, है ना? संघात में नहीं हूं, हाँ, मन के न रहने पर मेरा अस्तित्व खत्म होता, इसलिए क्या सिद्ध हुआ? टांग के न रहने पर भी मेरा अस्तित्व है, इसका मतलब संघात में नहीं हूं, यह निश्चय करो बेटा। संगातोपि तथा नाहम इति दृश्य विलक्षणम, मैं तो क्या हूं? दृश्य विलक्षण हूं। द्रष्टारम, मैं दृष्टा हूं, दृश्य विलक्षण दृष्टा हूं, ठीक विपरीत हूं। अनुवादेन निपुणम संप्रदारय, सम्यक धारय संप्रदारय, इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, देहेन्द्रियादयो भावा, देहेन्द्रियादयो भावा आनादिव्यापृतीक्षमः यस्य सन्निधिमात्रेण सोहम् इत्यवधारय। देह इंद्रिय मन बुद्धि या ये सब संघात होकर आना उपादान आदि व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं? आनोपादान आदि व्यवहार करते हैं, उपादान माने लेना, आन माने देना छोड़ना, आनोपादान आदि आधिपत्य से और भी व्यवहार है समस्त। व्यप्रतिक्षमा, करने में ये समर्थ हैं, किसके चलते? ये हानोपादान व्यवहार करने में समर्थ हैं तो किसके चलते? ये आपस में मिलकर ये कार्य करने में समर्थ हैं, संगात होकर ये कार्य करने में ये समर्थ हुए हैं कि कोई अन्य कारण से ये कार्य करने में समर्थ हैं? यदि संगात होकर ये कार्य करने में समर्थ होते इनमें से कुछ तो मृत पश्चात भी रहते हैं, तो अनुपादान कार्य कर लेते, समझेगी? और जबकि मृत पश्चात अनुपादान कर्म करने में असमर्थ है, सामान्य दृष्टि से विचार कर रहे हैं। मृत शरीर में भी गोलक तो यथावत ही है, तो इसीलिए गोलक ही सब मिलकर अनुपादान कर्म करे, हाथ तो रहता ही है, लेने देने का काम करे, पांव रहता ही है, चलने फिरने का काम करे, वायु उपस्थ रहता ही है, त्याग्नि विसर्जन करने का काम करे। बोले नहीं, देहा देहेन्द्रिया भावा हानादि व्यप्रतिक्षम, व्यप्रति माने व्यवहार सक्षम, यस्य सन्निधि मात्रेण, जिसके उपस्थिति मात्र से ये देह इंद्रिय मन प्राण ये सब भाव व्यप्रतिक्षम अनुपादान व्यवहार करने में सक्षम होते हैं, जिसके सन्निधि मात्र से ना, सो अहम, तो किसके सन्निधि मात्र से? मेरी सन्निधि मात्र से ये संघात या एक एक, ये संघात या एक एक, सभी मिलकर हो चाहे एक एक हो, अनुपादान आदि व्यवहार करने में सक्षम कब होते हैं? जब मेरी सन्निधि इनको प्राप्त होता है, और मेरा सान्निध्य इनको प्राप्त न हो तो यह अनुपादान कर्म करने में समर्थ नहीं है। तो मैं ही आत्मा हूं, मेरी उपस्थिति ये समर्थ है, ये स्वतंत्र समर्थ नहीं है। इसका मतलब मैं आत्मा हूं, यस्य सन्निधि मात्रेण सोहम, जिसके सन्निधि मात्र से ये संघात हानुपादान कर्म करने में समर्थ है, वह मैं हूं। इति अवधारया, ऐसा निश्चय कर लो। कैसे महाराज? दृष्टांत देकर समझा रहे, प्रसिद्ध दृष्टांत है। अनापन्न विकारः सन्। अब यहां पूर्व पक्ष या जिज्ञासु शिष्य एक प्रश्न कर सकता है, शायद उसी के संभावनाओं को देखकर ये श्लोक दे रहे हैं, ये उत्तर दे रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं। प्रश्न की संभावना क्या है? महाराज, ये देह से लेकर प्राण पर्यंत ये सब विकारी हैं, जड़ हैं। ये बात इससे पहले के प्रसंगों से स्पष्ट हो चुका है। और यदि इनके सन्निधि, आत्मा के सन्निधि से इनमें विकार आता है, इनमें परिणाम आता है, इनमें स्पंदन आता है, इनमें क्रिया आती है, तब तो इनमें होने वाले विकार, इनमें होने वाली क्रियाएं, इनमें होने वाली परिणाम से वह भी विकारी हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, तो फिर आत्मा में भी वह विकार, इनके संबंध से आत्मा में भी वह विकार आ जाएगा। यथा, ये प्रश्न कर सकता है जिज्ञासु, यथा अग्नि के संबंध से लोहे में दाहकता है, अन्यथा लोहे में जलाने की क्षमता नहीं है। इसी तरह आत्मा के सन्निधि मात्र से जड़ इंद्रिय आदि प्राण पर्यंत में चेतना जैसा भास होना और सोसो व्यापार करने में सक्षमता समर्थ होना ये मानते हो तो लोहे के संबंध से अग्नि में स्थूलता आ जाता है। किसमें? अग्नि के संबंध में लोहे में दाहकता आती है तो लोहे के संबंध से सूक्ष्म अग्नि में स्थूलता आ गया कि नहीं? बोलो, यहां क्यों नहीं स्थूलता आ गया? तभी ना इदम करके आप संकेत कर रहे हो, इदम बननी, अयम बननी, ये आग है मत छूना, अन्यथा ये आग है करके निर्देशन तुम कैसे करोगे? अग्नि तो सूक्ष्म है, स्थूल के संबंध से सूक्ष्म अग्नि में स्थूलता आ गया, तो सूक्ष्म में स्थूलता आना यही तो विकार है कि नहीं? बोलो, यही तो विकार है। सूक्ष्म में स्थूलता आ जाना, स्थूलता के संबंध से सूक्ष्म में स्थूलता आ जाना, ये अन्य का धर्म, अन्य में संसर्ग से आ गया। हाँ, गुरुत्व आ गया अग्नि में, वजन आ गया, नहीं तो अग्नि का कोई वजन होता है? और अग्नि के, अग्नि में वजन आ गया किसके संबंध से? लोहे के संबंध से अग्नि में वजन आ गया। हाँ, लोहे के संबंध से अग्नि में स्थूलता आ गई, तब जड़ चैतन्य के संसर्ग से जड़ों में क्रिया करने की क्षमता आती है आप कहते हो, तो जड़ों के संबंध से आत्मा में स्थूलता आ जाएगी, तो क्या आप आत्मा की स्थूलता को स्वीकार करोगे? दृश्य के संबंध से आत्मा में दृश्यत्व आ जाएगा यदि आप ये बात कहते हो, तो किसके संबंध से? दृश्य के संबंध से, दृश्य में कोई धर्म, नया धर्म आता है, नया भाव की प्रतीति होती है, तो इसी तरह दृश्य के संबंध से दृष्टा में दृश्यत्व आ जाएगा, और दृष्टा में दृश्य के संबंध से यदि दृश्यत्व आ गया फिर दृष्टा दृष्टा ही नहीं रहा, फिर अनात्मा हो जाएगा। दृश्यत्व आते ही, एक बार भी दृश्यत्व आ गया, न दिखने वाले अग्नि में लोहे के संबंध से दृश्यत्व आया कि नहीं? बोलो, है? तब क्या अग्नि को दृश्य है कह पाओगे? तब तो विकार आ गया। इसी तरह आत्मा में भी विकार आ जाएगा भाई। बोले बेटा, तुमने दृष्टांत तो बढ़िया दिया, युक्ति तो बहुत बढ़िया लगाई, बुद्धि तो लगाई है, हमने संसर्ग से नहीं कहा, सान्निध्य से कहा। इस शब्दों पर तुमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तुम दृष्टांत गलत दिया है। हमने संसर्ग से नहीं कहा है, तुमने जो दृष्टांत दिया वो संसर्ग अध्यास का दृष्टांत है। हम संसर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, सान्निध्य की बात कर रहे हैं। हाँ, कैसे महाराज? अनापन्न विकार सन स्वयं निर्विकार रहता हुआ, हाँ, विकार न आपन्न अनापन्न, समझे कि नहीं? विकार आपन्न न आपन्न, अनापन्न, विकृत हुए बिना, दृश्य के विकारों से विकृत हुए बिना, दृश्य के धर्मों से असंग रहता हुआ अनापन्न विकार का अर्थ समझ में आ गया। विकारवान पदार्थों से विकृत हुए बिना अनापन्न विकार, विकृत पदार्थ को प्रकाशित करना, जैसे प्रकाश का काम है ना? प्रकाश का काम क्या है? विकृत पदार्थों से विकृत हुए बिना विकृत पदार्थों को प्रकाशित करना, जैसे प्रकाश का धर्म है। इसी तरह विकृत पदार्थों से कोई संबंध रखे बिना असंग सन्निधि मात्रेण अनापन्न विकार, सन माने होता हुआ, विकार से रहित होता हुआ, अयस्कांत वदेवय, अयस्कांत चुंबक, चुंबक एक लोहा जाति का पदार्थ है, लेकिन लोहा नहीं है, लोहे में और उसमें अंतर है। लोहे जाति का पदार्थ है मैग्नेट, चुंबक, इसलिए अय शब्द भी प्रयोग कर दिया, लेकिन वह एक लोहे से विशेष होने के कारण उसको कांत भी कह दिया, अयस्कांत कह दिया। कांत शब्द मणि के लिए कहा जाता है, तो लोहे में वो मणि तुल्य ही तो है, है? लोहे की कीमत से थोड़ी बिकता है, वो ज्यादा कीमत से बिकता है। अयस्कांतवत एव यह, जैसे चुंबक स्वयं निष्क्रिय होता हुआ जड़ लोहे के टुकड़ों में गति पैदा करता है, निष्क्रिय लोहे के टुकड़ों को स्वयं निष्क्रिय होता हुआ सक्रिय बनाता है। यह दृष्टांत बड़ा फेमस है, समझे कि नहीं? लोहे का कील कहीं रख दो, जड़ होने के कारण उसमें कोई क्रिया नहीं है, लेकिन उसके नजदीक यदि चुंबक को ले जाओगे, जड़ होने पर भी उसमें स्वतः क्रिया आ जाती है, वो चलने लगता है। कौन? पिन, चुंबक नहीं, पिन लोहा टुकड़ा चलने लगता है, तो क्या वो जड़ में क्रिया दिखाई पड़ा कि नहीं? इसी तरह चैतन्य के सन्निधि मात्र से, संसर्ग की तो बातें छोड़ दो, चैतन्य की उपस्थिति, चैतन्य के सान्निध्य मात्र से देह से लेकर प्राण पर्यंत, जो पहले श्लोक में कहा गया है, 16वें श्लोक में, इस सब में क्रिया विकार क्रिया दिख रहा है। तो ये क्रिया देखने के चलते लोगों को भ्रांति हो रही है कि यही चैतन्य है, प्राण में जो क्रिया दिख रही है, लोगों को भ्रांति हो रही है कि यही चैतन्य है, इंद्रियों में जो क्रिया दिख रही है, देखने की, जानने की, बुद्धि में क्षमता, मन में निश्चय करने की, ये सब की क्रियाएं जो दिख रही है, वो तो चैतन्य के सान्निध्य से ये सब क्रियाएं हैं, लेकिन लोगों को क्या भ्रांति हो रही है? ये स्वतंत्र चैतन्य है, स्वतंत्र क्रियाशील हो रहे हैं, अपने आप क्रियाशील हो रहे हैं। अनापन्न विकार सन अयस्कांत वदेवय बुद्धियादिश्चालयत प्रत्यक, बुद्धियादि सभी अवयवों को क्रियाशील बनाता है, चलते हैं। चलते हैं माने चलाता है ऐसा लगता है, चलाता नहीं है, न खुद चलता है न किसी को चलाता है, लेकिन अपनी उपस्थिति जो उत्सव चलने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि उसने चलाया। तो चलाने का काम वो कर रहा है, वाणी बोल रही है, उसके उपस्थिति से वाणी बोल रही है, लेकिन लोग कहते हैं कि वाणी ही चैतन्य है इसीलिए वाणी बोल रही है। और यह कह दिया जाता है कि वाणी, कोई कोई व्यक्ति कहते नहीं नहीं आत्मा ने वाणी को चलाया है, न आत्मा ने चलाया है न आत्मा खुद चली है, आत्मा की सन्निधि मात्र से लोहे के तरह वाणी बोलने लग गई। आत्मा के सन्निधि मात्र से लोहे की तरह कान सुनने लग गए हैं। आत्मा के सन्निधि मात्र से, उपस्थिति मात्र से लोहे की तरह आंखें देखने लग गई। हाँ, समझे कि नहीं? ये जो बत्ती है रोशनी करती है ना, पावर करंट रोशनी करती है कि नहीं? है करंट रोशनी नहीं करती है, करंट के सन्निधि में बल्ब रोशनी करता है। यदि करंट रोशनी करती है, करंट यदि रोशनी करता होता तो नंगे तार में भी रोशनी होता, क्योंकि वहां करंट है कि नहीं बोलो? करंट में यदि रोशनी करने की क्षमता होती, नंगे तार में करंट तो है ही है, हाइपरटेंशन लाइन जाता है कि नहीं बोलो? उसमें करंट है कि नहीं? क्या रोशनी करता है? रोशनी माने करंट के सन्निधि से बल्ब रोशनी करती है, लेकिन भ्रांति क्या होता है लोगों को, बिजली रोशनी कर रही है। करंट गर्म करती है कि ठंडा करती है? करंट न गर्म करती है न ठंडा करती है। करंट का काम नहीं है गर्म करना, करंट का काम नहीं है ठंडा करना। करंट की उपस्थिति में गर्म करने का यंत्र गर्म करती है, करता है, ठंडा करने का यंत्र ठंडा करता है। ठंडा करना गर्म करना करंट यंत्र का काम है, करंट का काम नहीं है, लेकिन करंट से अलग हुआ हुआ यंत्र न ठंडा कर सकता है न गर्म कर सकता है। जिस यंत्र में ठंडा करने की क्षमता है, धर्म है, करंट की उपस्थिति से वह ठंडा काम करने लग जाए अपने आप ही। जिस यंत्र में गर्म करने का धर्म है, करंट की उपस्थिति में वह धर्म गर्म करने लग जाए। जिस यंत्र में रोशनी करने का धर्म है, करंट की उपस्थिति से रोशनी करने लग जाए। लेकिन रोशनी करंट न रोशनी करती है, न गर्म न ठंडा न क्या कुछ, वो केवल उपस्थिति है। इसी तरह तुम्हारे ये सब क्या है, इंद्रियां यंत्रों की तरह अलग अलग यंत्र हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया ना, यंत्रारूढ़ानि मायया। पंचदशी विद्यारण्य मुनि जी ने इस गीता के इस श्लोक को यंत्रारूढ़ानि मायया इस श्लोक की व्याख्या की है। देहादि पंजरम यंत्र, शरीर से लेकर प्राण पर्यंत ये सब पंजर हैं, ये यंत्र हैं। है? क्या हैं ये यंत्र हैं? है? अब इसमें जो आरूढ़ माने उपस्थित है चैतन्य, जैसे बिजली की उपस्थिति होते ही यंत्र काम करने लगता है, तो उसी तरह वह आत्मा अपनी उपस्थिति मात्र से ये सब अपने काम करते हैं। लोग ये कह देते हैं, किसी को भ्रांति होती है ये यंत्र ही खुद कर रही है, किसी को भ्रांति होती है कि आत्मा करवा रहा है, वास्तव में न करवा रहा है न कर रहा है, वो असंग है। उस असंगता को ही असंग उपस्थिति, ये शब्द और ध्यान से सुन लेना, आत्मा असंग उपस्थिति है। अनापन्न विपकार सन अयस्कांतवद एव यः बुद्ध्यादीश चालयेत् प्रत्यक् सोहम इत्यावधारय। अजडात्मा वदाभांति यत्सान्निध्या जड़ा अपि, जड़ा अपि स्वरूपतः जड़ होने पर भी, जड़ होते हुए ही अजड़ात्मवत भांति, जिसके सान्निध्य मात्र से जड़ में भी अजड़ता की भ्रांति होती है, भांति भ्रांति भांति, भान होता है भांति, भान होना माने प्रतीत होना। अजड़ात अनात्मा अजड़ पर भी चैतन्य आत्मा के सान्निध्य से चैतन्य आत्मा की तरह भान होने लगता है। अजड़ात्मवद आभान्ति यत् सान्निध्या जड़ा अपि देहेन्द्रिय मन प्राण, जड़ा अपि देह इंद्रिय मन प्राण, स्वरूप से ये जड़ हैं, जड़ होने पर भी आत्मा के सान्निध्य से आत्मा जैसे होने लग गए, चैतन्य के सान्निध्य से चैतन्य जैसे भान होने लगा। सोहम इत्यावधारय, आदिगुरु शंकराचार्य दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी इसका संकेत करते हैं। यस्यैव स्फुरणत् यस्यैव स्फुरणात् सदात्मकम् असत्कल्पार्थकम् भासते, असत्कल्पार्थकम् अपि सदात्मकम् भासते। असत्कल्पार्थक माने असत तुल्य, असत ही है ये सब। असत क्या है? वो जो यहां संकेत कर दिया, देह इंद्रिय मन प्राण, ऐसे ही वह स्फुरणा, जिसकी स्फुरणा मात्र से असत भी सदात्मकम भासते, उसी का यहां संकेत कर दिया ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में जो कहा, देहेन्द्रिय मन प्राण सोहम मित्य अवधारय, वही मैं हूं, देह इंद्रिय प्राण मैं नहीं। और आगे क्या है? कल थे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।